हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम दूसरा स्कंद अध्याय 5 श्लोक संख्या 9, 10 एंड 11। इस आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यत् कीर्तनं यत् स्मरणं यदीक्षणं यत् वन्दनं यत् श्रवणं यदर्हणं लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषम् तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। किरातहूणां द्रपुलिन्दपुल्कषां आभीरशुम्भा यवनाकसादया येनि च पापा यदपाश्रयाश्रया शुध्यन्ति तस्मै प्रभवेष्णवे नमः। प्रचोदिताये न पुरा सरस्वती वितन्वता च स्यसितिं सतीं स्मृतिं हृदि स्वलक्षणा प्रा दुरभूत् किलास्यत समीरिषीणां ऋषभ प्रसीदताम् भूतैर्महद्भि य इमा पुरो विभु निर्मायशीति यदमोषु पुरुष भुङ्क्ते गुणांशो दशषोडशात्मक सोलङ्कृशिष्ट भगवान् वचांसि मे। नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय विधसे पपुर्ज्ञानमयं सौम्या यन्मुखाम्बुरुहासवम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायामुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिरभवति नैष्ठिकी। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ग्रंथ राशि मद भागवत महापुराण की जय। तो यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं कि जब परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी से सृष्टि क्रम सृष्टि रचना के विषय में पूछा तो सुखदेव गोस्वामी ने सबसे पहले तो अपना मंगलाचरण किया और भगवान को विभिन्न नामों विभिन्न रूपों से प्रणाम करने के बाद अब जब वो उत्तर देना प्रारंभ कर रहे हैं तो वो बता रहे हैं कि मैं वही बात बताने जा रहा हूँ जो कि नारद मुनि के पूछने पर ब्रह्मा जी ने बताई थी। और कल हमने नारद मुनि के प्रश्न सुने कि नारद मुनि किस तरह से ब्रह्मा जी से याचना कर रहे हैं कि आपके द्वारा जो सृजन की हुई सृष्टि है उसको देखकर तो ऐसा लगता है कि आप ही सृजन करता हो, लेकिन आपको देखकर ऐसा लगता है कि आप किसी और का ध्यान कर रहे हो। यदि आप ही भगवान होते तो किसी और का तो ध्यान नहीं करते। तो आप मुझे ये बताइए कि सृजन आप कैसे कर रहे हो, किसके आधार पर कर रहे हो, आप किसके अंडर में रहकर कार्य कर रहे हो, क्या कोई ऐसा है जो आपसे भी महान है, और ये सृष्टि की रचना जो हो रही है उसका आधार क्या है, विभिन्न प्रश्न पूछे। और अंत में नारद मुनि ने ब्रह्मा जी से कहा, ये पिताजी आप सब कुछ जानने वाले हैं और आप सबों की नियंता हैं, अतएव मैंने आपसे जितने सारे प्रश्न किए हैं उन्हें कृपा करके बताइए जिससे मैं आपके शिष्य के स्वरूप में उन्हें समझ सकूं। और जब ब्रह्मा जी आज उन प्रश्नों का उत्तर देंगे और उत्तर देने से पहले अपने पुत्र के इन प्रश्नों की प्रशंसा करेंगे। वे कहते हैं कि वैसे तो संसार में हर कोई किसी न किसी से कुछ न कुछ पूछता रहता है, और संतान की तो आदत होती है माता पिता से हर वक्त कुछ न कुछ पूछते हैं, लेकिन वास्तव में वो संतान धन्य है, वो माता पिता धन्य है जिनकी ऐसी संतान हो जो कि अपने माता पिता से भगवान के विषय में पूछती है। क्योंकि अगर वो भौतिक वस्तुओं के विषय में भी पूछेंगे तो माता पिता का तो कर्तव्य है कि उनको उनके विषय में भी बताए, जिसके विषय में सुनकर लाभ नहीं होने वाला, कुछ भी संसार के विषय में जान लो तो उससे लाभ नहीं होगा, लेकिन भगवान के विषय में जब बात कर रहे होते हैं ना, तो भगवान के विषय में बात करने से जीव का कल्याण होता है, मुख पवित्र होता है जो भगवान के विषय में गुणगान करता है, वो कर्ण पवित्र होते हैं जो भगवान के विषय में श्रवण करते हैं, वो समय सार्थक होता है जिस समय भगवान के विषय में वार्ता चल रही होती है। तो वो पूरे जीवों के लिए, जितने भी जीव हैं, चाहे वो लिविंग हो, नॉन लिविंग हो, पशु हो, पक्षी हो, वो उस एरिया के सारे जीव जो है वो पवित्र हो रहे होते हैं जहां पर ऐसी वार्ता चल रही होती। तो ब्रह्मा जी आज अत्यंत ही सुंदर रूप में सबसे पहले तो अपने पुत्र नारद जी के विषय में बताएंगे कि आप कितने करुणामय हो, आपके कारण आज सारे जीव जो है वो भगवान की सृष्टि के विषय में श्रवण करेंगे, और मुझे आपने यह प्रश्न पूछकर यह अवसर दिया कि मैं भगवान के विषय में अत्यंत ही बारीकी से सोच कर या विचार करके फिर आपको बताऊं, तो मेरा मन बुद्धि वाणी पवित्र होगी। आपने पूछा है इससे आपको कल्याण होगा और समस्त जीवों का भी इससे कल्याण होगा। ब्रह्मा उवाच सम्यक् कारुणिकसिदम् वत्सते विचिकित्सतम् यदहं चोदितं सौम्य भगवत् वीर्यदर्शनम् सम्यक् कारुणिकसिदम् वत्सते विचिकित्सितम् यदहं चोदितः सौम्य भगवत् वीर्यदर्शने सम्यक् कारुणिकस्येदम् वत्सते विचिकित्सितम् यदहं चोदितः सौम्य भगवत् वीर्यदर्शने। शब्दात् ब्रह्मा उवाच, यानी ब्रह्मा जी ने कहा सम्यक् कारुणिकस्येदम्। सम्यक् मना बिल्कुल ही सुंदर और ठीक ढंग से जो आपने प्रश्न पूछे हैं, कारुणिकस्य तुम्हारा जो अत्यंत तुम बहुत ही दयालु हो इसीलिए तुमने इतने पवित्र प्रश्न पूछे हैं। वत्स ते विचिकित्सितम्, वत्स
मतलब ए मेरे बच्चे ते तुम्हारी जिज्ञासा विचिकित्सा मतलब जो आपने प्रश्न पूछे हैं वो आपने अपने हृदय में जो करुणा है उसके कारण पूछे हैं। यदा हम मतलब जिससे मैं चोदित प्रेरित होगा, आपने इतना अच्छा पूछा इसीलिए मुझे भी ये प्रेरणा होगी। सौम्य भगवत विदर्शनम, सौम्य हे भद्र। वास्तव में वो जीव बहुत ही ज्यादा पवित्र होते हैं जिसके कारण हम भगवान के विषय में कुछ बोलते हैं। तो यहाँ पर पूरा का पूरा श्रेय नारद मुनि को दिया जा रहा है कि नारद मुनि ने ऐसा पूछा। तो कभी बोलते हैं कि आप कितने करुणामयी हो, और फिर बोलते हैं आप कितने सौम्य हो, भद्र हो। भगवत वीर्य दर्शनम, क्यों? क्योंकि भगवत भगवान का वीर्य दर्शनम पराक्रम के संबंध के विषय में आज आपके कारण मेरे मुख से शब्द निकलने वाले हैं। अनुवाद देखिए, ब्रह्मा जी ने कहा, हे मेरे वत्स नारद, तुमने सबों पर मुझ सहित, सबों पर यानी जितने भी जीव हैं उन पर करुणा करके ही ये सारे प्रश्न पूछे हैं, क्योंकि इनसे मैं भगवान के पराक्रम को बारीकी से देखने के लिए प्रेरित हुआ हूँ। श्रीला प्रभुपाद की जय। श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं, नारद जी द्वारा प्रश्न पूछे जाने पर ब्रह्मा जी ने उनको बधाई दी, क्योंकि जब भी भक्तों से भगवान के विषय में प्रश्न पूछे जाते हैं तो वे प्रत्युत प्रफुल्लित हो उठते हैं। यह भगवान के शुद्ध भक्त का लक्षण है। भगवान के दिव्य कार्यकलापों से संबंधित ऐसी वार्ताओं से वह वायुमंडल शुद्ध हो जाता है जिसमें ये वार्ताएं होती हैं, और ऐसे प्रश्नों का उत्तर देते समय भक्तगण जीवंत हो उठते हैं। यह प्रश्नकर्ता तथा उत्तरदाता दोनों को ही शुद्ध करने वाले हैं। शुद्ध भक्त केवल भगवान के विषय में प्रत्येक वस्तु जानकर तुष्ट नहीं होते, अपितु वे इस जानकारी को अन्यों तक प्रसारित करने के लिए उत्सुक रहते हैं, क्योंकि वे यह देखना चाहते हैं कि भगवान का यश प्रत्येक व्यक्ति को ज्ञात हो। अतएव जब उन्हें ऐसा अवसर प्रदान किया जाता है तब वे अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। धर्मोपदेश कार्यों का यही मूल सिद्धांत है। श्रीला प्रभुपाद की जय। श्रीला प्रभुपाद जी बहुत ही सुंदर बता रहे हैं कि जो भक्त होता है उसकी सदैव इच्छा होती है कि भगवान के विषय में जानूं, तो वो भगवान के विषय में शुद्ध वैष्णवों से श्रवण करता है, और साथ साथ में उसकी ये भी इच्छा होती है कि सारे जीवों तक यह भगवान के विषय में जो जानकारी है वो पहुंचाई जाए। मैं कैसे सब जीवों को भगवान के विषय में बताऊं? तो जब ऐसे भक्तों को ऐसा अवसर प्रदान किया जाता है, ऐसा प्लेटफॉर्म प्रदान किया जाता है जहाँ पर कि वो भगवान की महिमा का गुणगान कर सकते हैं, तो वो अत्यंत ही प्रसन्न होते हैं। और इसलिए ब्रह्मा जी भी अपने पुत्र के इस प्रश्न से अत्यंत प्रसन्न हुए। आगे ब्रह्मा जी कहते, नानृतम तव तच्चापि यथा माम प्रब्रवीषि भो अविज्ञाय परम मत्त एतावत्त्वं यतो हि मे। नानृतम तव तच्चापि यथा माम प्रब्रवीषि भो अविज्ञाय परम मत्त एतावत्त्वं यतो हि मे। नानृतम तव तच्चापि यथा माम प्रब्रवीषि भो अविज्ञाय परम मत्त एतावत् त्वं यतो हि मे। नानृतम तव तच्चापि, नानृतम, अनृतम कहते हैं झूठ, यानी अभी ब्रह्मा जी नारद जी को कह रहे हैं, नानृतम तव तच्चापि, आपने जैसा भी अभी कहा है उसमें कोई झूठ नहीं है, असत्य नहीं है। आपने मुझे कहा है कि मैं सृष्टि बनाने वाला हूँ, सृष्टि को है ना सृजन मैंने किया है, तो आपने असत्य नहीं कहा है। यथा माम प्रब्रवीषि प्रभु, प्रब्रवीषि भो, यथा मतलब विषय में, माम मेरे विषय में, प्रब्रवीषि जिस तरह से तुम कहते हो, भो हे पुत्र, हे पुत्र आपने जो मेरे विषय में कहा है उसमें असत्य नहीं है। कारण क्या है? अविज्ञाय परम मत्त, अविज्ञाय परम मत्त मतलब मुझसे जो परम है, मुझसे जो परे या परम पुरुष भगवान है उसके विषय में जो नहीं जानता है अविज्ञाय, अगर जिसको भगवान के विषय में परमत्त मतलब जो परम सत्य भगवान है उनके विषय में जो नहीं जानेगा उसको तो यही लगेगा ना कि मैं ही सब कुछ करता हूँ। एतावत् त्वम्, एतावत् यानी तुम जो कह रहे हो, यतः इसी के कारण कह रहे हो, ही में यानी निश्चय ही मेरे विषय में तुम इसीलिए कह रहे हो क्योंकि तुम्हें वास्तविक भगवान के विषय में पता नहीं है ना। तो जाहिर सी बात है जिसको भगवान के विषय में नहीं पता होगा और मुझे देखा होगा कि मैं सृष्टि का सृजन कर रहा हूँ तो वो यही सोचेगा कि मैं ही सबको करता धरता हूँ। तो इसीलिए जीव को जब तक परम भगवान का ज्ञान नहीं होता है तब तक वो जहां तक उसकी पहुंच जाती है ना, उसकी बुद्धि जाती है, उसी को ही वो सर्वश्रेष्ठ मानने लगता है ना। कोई किसी संत को भगवान मानने लगता है, तो कोई किसी देवता को भगवान मानने लगता है, तो कोई ब्रह्मा जी को भगवान मानने लगता है। लेकिन इसका कारण क्या है? अविज्ञाय परमत्ता, क्योंकि वास्तविक भगवान के विषय में वो जानते नहीं है इसलिए मोहग्रस्त हो गए हैं। श्रील प्रभुपाद जी इसके विषय में बहुत ही सुंदर रीति से समझाएंगे। अनुवाद देखिए, तुमने मेरे विषय में जो कुछ कहा है वह असत्य नहीं है क्योंकि जब तक कोई उन भगवान के विषय में अवगत नहीं हो लेता है जो मुझसे परे परम सत्य है तब तक वह मेरे सशक्त कार्यकलापों से निश्चित रूप से मोहित होता रहेगा। शिला प्रभुपाद की जय। सबसे पहले तो यहाँ पर शिला प्रभुपाद जी एक कुएं के मेंढक की मिसाल देते हैं कि कुएं का मेंढक क्योंकि कुएं में रहता है तो उसको यही पता है कि कुआं सबसे बड़ा ही होता है, उसको विशाल सागर के विषय में नहीं पता होता। उसी तरह से यहाँ जीव जो भौतिक जगत में होता है वो जो चाहे बड़ा ही कितना ही बड़ा साइंटिस्ट क्यों ना हो जाए, कितना ही बड़ा बुद्धिमान क्यों ना हो जाए, उसे भौतिक जगत के विषय में ही पता चलता है। आध्यात्मिक भगवान के विषय में वो जानता ही नहीं है तो फिर वो इसी से भगवान का कंपैरिजन करने लगता है कि भगवान ऐसा होगा, भगवान ऐसा होगा, भगवान परम है। भगवान के विषय में पूरी तरह से जाना जाए ऐसा संभव ही नहीं है। उसके विषय में श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, कूप मंडूक तर्क यह बताता है कि कुएं की चार दीवारी तथा वातावरण के भीतर रहने वाला मेंढक विशाल सागर की लंबाई चौड़ाई का अनुमान नहीं लगा सकता। ऐसे मेंढक को यदि विशाल सागर की लंबाई चौड़ाई बताई जाए तो पहले तो वो विश्वास नहीं करेगा कि ऐसा समुद्र हो सकता है, और यदि कोई उसे आश्वस्त कर भी दे कि ऐसा समुद्र सचमुच में होता है तो वह मेंढक अपने पेट को फुलाकर कल्पना से उसे मापने का प्रयास करता है जिससे उसका छोटा सा पेट फट जाता है और वह बेचारा वास्तविक समुद्र का अनुभव किए बिना ही मर जाता है। इसी प्रकार भौतिक विज्ञानी भी भगवान की अचिंत्य शक्ति को अपने मेंढक शरीर के मस्तिष्क से तथा अपनी वैज्ञानिक उपलब्धियों के द्वारा माप कर चुनौती देना चाहते हैं किंतु अंत में वे विफल होकर मेंढक की मौत मरते हैं। श्रीला प्रभुपाद जी आगे कहते हैं, कभी कभी भौतिक दृष्टि से शक्तिशाली व्यक्ति को वास्तविक ईश्वर के ज्ञान के अभाव में ईश्वर या ईश्वर का अवतार मान लिया जाता है। ऐसे भौतिक मूल्यांकन को धीरे धीरे बढ़ाकर ब्रह्मा जी तक सर्वोत्तम सीमा तक पहुंचा जा सकता है जो इस ब्रह्मांड के सर्वोच्च जीव हैं और जिनकी आयु भौतिक वैज्ञानियों के लिए अकल्पनीय है। अब यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं छोटे छोटे लोगों को जो जितना ज्ञान का अभाव होगा ना तो कम कम लोगों को भी हम ईश्वर बोलेंगे कि ये ईश्वर है, उससे थोड़ा ज्ञान होगा तो उससे ऊपर, उससे थोड़ा ज्ञान होगा तो थोड़ा उससे ऊपर, देवताओं तक, संतों से देवताओं तक जाते हैं, देवताओं से ब्रह्मा जी तक तो जा सकते क्योंकि ब्रह्मा जी भी भौतिक जगत नहीं है। लेकिन ब्रह्मा जी की जो आयु है ना उसके विषय में अभी यहाँ पर बात कर रहे हैं श्रील प्रभुपाद जी कि ऐसे भौतिक मूल्यांकन को धीरे धीरे बढ़ाकर ब्रह्मा जी की सर्वोत्तम सीमा तक पहुंचा जा सकता है जो इस ब्रह्मांड के सर्वोच्च जीव हैं और जिनकी आयु भौतिक वैज्ञानियों के लिए अकल्पनीय है। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता नामक सर्वाधिक प्रामाणिक ग्रंथ 8.17 में विदित है,
ब्रह्मा का एक दिन और रात मिलकर हमारे ग्रह के लाखों वर्षों के तुल्य होते हैं। इस दीर्घ आयु पर कूप मंडूक भले ही विश्वास ना करें, किंतु जिन व्यक्तियों को श्रीमद् भगवद गीता में वर्णित सत्य की अनुभूति है, वे ऐसे महापुरुष के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं जो पूर्ण ब्रह्मांड की विविधता का सृजन करता है। श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कूप मंडूक, यानी भौतिक जो साइंटिस्ट हैं, जो कि एक मेंढक की तरह है, वो भले ब्रह्मा जी की आयु के विषय में समझ नहीं पाते हैं कि एक जीव की आयु 4,32,00,000,000 वर्ष कैसे हो सकती है। चार अरब 32,00,000,000,000 वर्षों का तो उनका एक दिन है, एक कल्प है, और ऐसी उनकी आयु है कितनी, 100 साल की, तो 31 मील पता नहीं कितने अरब खरब, बहुत बहुत है ना उनका, बड़ी आयु है। तो जाहिर सी बात है आजकल के साइंटिस्ट इस बात को नहीं समझ सकते। श्रीला प्रभुपाद जी बोलते कुएं के मेंढक हैं वो भी, भले ही विश्वास ना करें, लेकिन जो व्यक्ति श्रद्धावान है शास्त्रों पर और भगवान के शुद्ध भक्तों के वचनों पर, महापुरुषों के अस्तित्व को जो स्वीकार करते हैं, जो श्रद्धावान हैं, जो पूर्ण ब्रह्मा ऐसे ब्रह्मा जी जो कि पूर्ण ब्रह्मांड की विविधता और सृजन करता है, उनके विषय में वो जानते हैं और उस पर विश्वास भी करते हैं। आगे कहते हैं शास्त्रों से ये भी प्रकट होता है कि इस ब्रह्मांड के ब्रह्मा जी इस ब्रह्मांड से परे अनेक अन्य ब्रह्मांडों के ब्रह्माओं की अपेक्षा छोटे हैं, क्योंकि हमारा छोटा सा ब्रह्मांड है तो हमारे ब्रह्मा जी के सिर हैं 4 और वो छोटे हैं। बाकी हमारे ब्रह्मांड में तो सबसे लंबे हैं, सबसे बड़े हैं, सबसे महान हैं, लेकिन दूसरे ब्रह्मांडों की अपेक्षा वो छोटे हैं। बाकी हमने देखा है शास्त्रों में ये भी बताया गया है कि कुछ ब्रह्मा जी हैं जिनके 100 सर हैं, कुछ के 1,000 हैं, कुछ के 10,000 हैं, तो उसी की अपेक्षा वो बड़े बड़े हैं, लेकिन इनमें से कोई भी भगवान के समकक्ष नहीं है, भगवान के बराबर नहीं हो सकता कोई भी। आगे श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं नारद जी मुक्त आत्माओं में से एक हैं और मुक्ति मिलने के बाद ही वे नारद कहलाए, अन्यथा इसके पूर्व वे एक दासी के पुत्र थे। श्रीला प्रभुपाद जी नारद जी के विषय में बता रहे हैं कि पहले वो नारद मुनि कौन थे, जो कि हमने पहले स्कंद में पढ़ा, एक दासी के पुत्र थे, लेकिन शुद्ध भक्तों की कृपा से उनको आज नारद का पथ मिला है। लेकिन अब वो जब वो मुक्त आत्मा है तो भला उनके मन में ऐसा विचार कैसे आ सकता है। वो मुक्त आत्मा है तो भगवान के विषय में तो वो पूरी तरह से जानते होंगे, वो ब्रह्मा जी को कैसे सर्व कारण कारण मानते हैं। तो इस प्रश्न का अत्यंत ही सुंदर यहाँ प्रश्न प्रभुपाद जी उत्तर दे रहे हैं कि यहाँ पर यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि नारद जी को परमेश्वर का ज्ञान क्यों ना था और उन्होंने ब्रह्मा जी को परमेश्वर क्यों मान लिया था, जबकि वास्तविकता तो ऐसी ना थी। मुक्त आत्मा कभी ऐसे ब्रह्मात्मक विचार से मोहित नहीं होती, तो फिर नारद जी एक सामान्य अल्पज्ञ व्यक्ति की भांति इस तरह के प्रश्न क्यों पूछ रहे थे। ऐसा ही मोह अर्जुन को भी हुआ था, यद्यपि वे भगवान के नित्य सखा थे। अर्जुन या नारद जैसा मोह भगवान की इच्छा से ही उत्पन्न होता है, जिससे अन्य अमुक्त यानी बद्ध व्यक्ति भी भगवान के असली सत्य तथा ज्ञान की अनुभूति प्राप्त कर सके। श्री प्रभुपाद जी अत्यंत ही सुंदर और महत्वपूर्ण बात बता रहे कि जो मुक्त आत्माएं होती हैं वो इस तरह के प्रश्न इसलिए करती हैं ताकि हम जैसे बद्ध जीवों का उद्धार हो सके और हमें असली सत्य ज्ञान की अनुभूति हो सके। नारद के मन में ब्रह्मा जी के सर्वशक्तिमान होने का जो संदेह उठा वह कूप मंडूकों के लिए अच्छा पाठ है कि वे भगवान की गलत पहचान करके मोहित ना हो जाएं। यहाँ तक कि ब्रह्मा जैसे महापुरुष से तुलना करके और उनकी तो कोई बात ही नहीं जो क्षुद्र मानव अपने को ईश्वर या ईश्वर अवतार कहते हैं। यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि भगवान का किसी के साथ कोई भी कंपेयर नहीं किया जा सकता है। ये तो बिल्कुल जाहिल है, बहुत ही मोहग्रस्त जीव होते हैं जो किसी मानव को अपने आप को भगवान का अवतार कहते हैं, लेकिन अगर ब्रह्मा जी के साथ भी उनकी तुलना की जाए तो भी वो गलत है। तो फिर हम जो क्षुद्र मानव भगवान अपने आप को भगवान के साथ तुलना करते हैं उनका क्या कहा जाए कि वो कितने ही बुद्धिहीन व्यक्ति हैं। आगे श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, परमेश्वर सदैव सर्वश्रेष्ठ रहते हैं, और जैसा कि हमने अपने तात्पर्यों में कई बार प्रतिपादन किया है, कोई भी जीव यहाँ तक कि ब्रह्मा स्तर तक भी स्वयं को भगवान होने का दावा नहीं कर सकता। जब लोग किसी महापुरुष की मृत्यु के बाद वीर पूजा के रूप में उसको ईश्वर की भांति पूजने लगते हैं, तो इससे किसी को दिग्भ्रमित नहीं होना चाहिए। अभी आंशला प्रभुपाद जी बहुत ही सुंदर उदाहरण दे रहे हैं कि भगवान जो है वो भले कोई ऐसा कार्य कर दे जो कि साधारणतया किसी के लिए गलत हो, लेकिन वो भगवान है, वो महान है। कोई भी कार्य करने से भगवान की महानता कम नहीं होती, या मानो यदि भगवान से अच्छा नैतिक हो जाए या कुछ अच्छा कार्य करे तो भगवान के बराबर या भगवान से बढ़कर कभी नहीं हो सकता। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी उसका बहुत ही सुंदर उदाहरण देते हुए कहते हैं कि अयोध्या के राजा रामचंद्र जैसे अनेक राजा हुए हैं, किंतु प्रामाणिक शास्त्रों में कहीं भी ऐसे राजाओं का उल्लेख ईश्वर के रूप में नहीं हुआ है। है ना, बहुत सारे राजा भगवान राम से अच्छा राज्य कर चुके होंगे, लेकिन अच्छा राज्य अगर उन्होंने किया है तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो भी भगवान हो गए। भगवान भगवान है। यहाँ श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, भगवान राम होने के लिए आवश्यक योग्यता एक अच्छा राजा होना नहीं, अपितु भगवान होने के लिए कृष्ण जैसा महान पुरुष होना आवश्यक है। यदि हम कुरुक्षेत्र के युद्ध में भाग लेने वाले पात्रों के बारे में अध्ययन करें तो हम देखेंगे कि महाराज युधिष्ठिर भगवान रामचंद्र से कम पवित्र राजा नहीं थे, और पात्रों के अध्ययन से महाराज युधिष्ठिर कृष्ण से अच्छे नैतिकतावादी थे। भगवान कृष्ण तो कभी झूठ बोलते थे, कभी चोरी करते थे, लेकिन ये अधिक नैतिकतावादी थे। आगे यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी बता रहे, भगवान कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर से झूठ बोलने के लिए कहा, किंतु महाराज युधिष्ठिर ने इसका प्रतिरोध किया। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि महाराज युधिष्ठिर भगवान रामचंद्र या भगवान कृष्ण के तुल्य थे। महापुरुषों ने महाराज युधिष्ठिर को पुण्य आत्मा कहा है, किंतु उन्होंने राम या कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार किया है। अतएव भगवान सभी परिस्थितियों में भिन्न सत्ता होते हैं और इसके विषय में कोई अवतारवाद लागू नहीं होता। भगवान सदैव भगवान रहते हैं और सामान्य प्राणी कभी भी उनकी समता नहीं कर सकता। यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी ने अत्यंत ही सुंदर बात बताई कि कोई चाहे कितना ही महान कार्य क्यों ना कर ले, वो भगवान नहीं बन सकता। भगवान भगवान है, और कैसे पता चलेगा कि वो भगवान है? प्रामाणिक शास्त्रों से पता चलेगा, शुद्ध भक्तों से पता चलेगा, गीता और भागवतम से, जिसमें साफ साफ बताया है कि कृष्ण ही भगवान है। भागवत में जिन्होंने सारे शास्त्र लिखे, वो सारे शास्त्र लिखने वाले वेदव्यास जी कहते हैं, एतेजांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। इस एक वाक्य से ही समझ जाना चाहिए कि कृष्ण भगवान है, और बाकी जो भी हैं वो भगवान के अवतार हो सकते हैं, उनकी शक्तियां हो सकती हैं, उनके अंश हो सकते हैं, परंतु भगवान केवल कृष्ण है। उसी से आगे ब्रह्मा जी कहते हैं, ये न स्वरोचिषा विश्वम रोचितम रोचयाम्यहम् यथार्कोऽग्निर्यथा सोमो यथर्क्ष गृहतारका। ये न स्वरोचिषा विश्वम रोचितम रोचयाम्यहम् यथार्कोऽग्निर्यथा सोमो यथर्क्ष गृहतारका। येन स्वरोचिषा विश्वं रोचितं रोचयाम्यहं यथार्कोऽग्निर्यथा सोमो यथक्ष गृहतारका। यहाँ पर ब्रह्मा जी नारद जी को कहते हैं कि आपने जो मुझे सोचा है, जैसे आपके मन में यह संदेह हुआ है कि मैं सृष्टि नहीं कर रहा हूँ, अगर मैं कर रहा होता तो फिर मैं किसी की सेवा या किसी का ध्यान कैसे कर सकता था, तो आपका ये सोचना कि मैं परम सत्ता नहीं हूँ, ये अनुमान लगाना बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल सही है। उसके विषय में यहाँ पर ब्रह्मा जी नारद जी को कहते हैं स्वरोचिषा, ये न मतलब वो भगवान जिनके द्वारा स्वरोचिषा अपने तेज से विश्वम ये सारे जगत को रोचितम, यहाँ पर बताया जा रहा है कि पूरा जो संसार है वो पहले से ही रचा हुआ है। रोचितम मतलब ये भगवान ने सब चीजें पहले से ही बना दी हैं, ये सारा का सारा तेज जो है वो भगवान का है। ये न स्वरोचिषा विश्वम रोचितम रोचयामि हम, फिर प्रकट तो पहले हुआ, अब मैंने क्या किया, इसको वापस से जब वो सो गए सब तो उनको वापस से प्रकट करता। रोचयामि अहम, पहले से बना दिया गया है, मैं सेकंड क्रिएटर हूँ। यहाँ पर ब्रह्मा जी ये बता रहे हैं, ये न स्वरोचिषा विश्वम, ये पहले से रोचितम रोचयामि हम, मैं तो पहले से प्रकट हुए विश्व को दोबारा से प्रकट कर रहा हूँ, और वो कैसे, यथार्को, यथा जिस तरह से, अर्को माना सूर्य, अग्नि माना अग्नि, यथा माना जिस तरह, सोम माना चंद्रमा, और यथा मतलब जिस तरह, ऋक्ष मतलब आकाश, गृह मतलब प्रभावशाली लोक, तारका मतलब तारे। अनुवाद देखिए, भगवान द्वारा अपनी निजी तेज यानी ब्रह्म ज्योति से की गई सृष्टि के बाद येन स्वरोचिषा विश्वम रोचितम रोचयामहम, जब भगवान ने अपनी ब्रह्म ज्योति से ये सृष्टि कर ली थी, उसके बाद ब्रह्मा जी कहते हैं मैं उसी तरह सृजन करता हूँ, कैसे, यथार्को निर यथा सोमो, यथार्को मतलब जिस तरह सूर्य द्वारा अग्नि प्रकट होने के बाद, जब सूर्य से प्रकाश निकलता है उसके बाद सोमो यथार्क्ष ग्रह तारिका, चंद्रमा आकाश प्रभावशाली गृह तथा टिमटमाते हुए तारे भी अपनी चमक प्रकट करते हैं। जब तक सूर्य से प्रकाश नहीं मिलता तब तक उनका किसी का प्रकाश नहीं होता, लेकिन जैसे ही सूर्य के द्वारा प्रकाश मिल जाता है तो सारे ग्रह, चंद्रमा और ना तारामंडल, ये सब चमकने लगते हैं। उसी तरह से जब भगवान ने अपनी ब्रह्म ज्योति से जो तेज प्रकट किया उसी के द्वारा मैं सृजन करता हूँ। श्रील प्रभुपाद जी इस श्लोक को बहुत ही सुंदर तरीके से समझाएंगे। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा, श्रील प्रभुपाद की इच्छा, श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं ब्रह्मा जी ने नारद से कहा कि उनका अनुमान कि ब्रह्मा सृष्टि में परम सत्ता नहीं है ठीक ही था। कभी कभी कम बुद्धि वाले मनुष्य की ऐसी मूर्खतापूर्वक धारणा बनती है कि ब्रह्मा ही सभी कारणों के कारण है, लेकिन नारद इस बात को इस ब्रह्मांड के परम प्रमाण ब्रह्मा जी के कथनों से स्पष्ट कर लेना चाहते थे। जिस प्रकार राज्य के सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय अंतिम होता है, उसी तरह ब्रह्मांड की सर्वोपरि सत्ता रूप ब्रह्मा जी का निर्णय ज्ञान प्राप्त करने की वैदिक विधि के अनुसार अंतिम ही था, जैसा कि हम पिछले श्लोकों में पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं। यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी बहुत ही सुंदर बात बता रहे कि ब्रह्मा जी क्योंकि परम जीव हैं और प्रथम जीव हैं, इसलिए नारद मुनि जैसे शुद्ध वैष्णव एक ऐसा प्रमाण चाहते हैं सृष्टि प्रक्रम का कि जिसमें कोई भी
डाउट ना रह जाए। ब्रह्मा जी ने कह दिया कि ये सारी सृष्टि भगवान के द्वारा बनाई गई है और मैं द्वितीय क्रिएटर हूँ, सेकेंड क्रिएटर हूँ, तो मतलब इसके अलावा और भले कोई कुछ भी कहता रहे कि संसार किसने बनाया किसने बनाया किसने, तो किसी का भी है ना बात जो है वो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है जितनी कि ब्रह्मा जी की है। क्योंकि ब्रह्मा जी जो हैं वो साक्षात भगवान के द्वारा प्रकट किए हुए जीव हैं और इनको ज्ञान भी साक्षात भगवान ने दिया है, तो उनका निर्णय ही अंतिम निर्णय है। आगे श्रीला प्रभुपाद जी एक और भी महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं कि नारद मुनि मुक्त आत्मा थे, अतएव वे कोई ऐसे अल्पज्ञ व्यक्ति ना थे जो झूठे भगवान या भगवानों को मनमाने ढंग से स्वीकार कर लेते। वे अपने को अल्पज्ञ के रूप में प्रस्तुत कर रहे थे किंतु बुद्धिमानी के साथ संदेह को प्रस्तुत कर रहे थे जिसका स्पष्टीकरण परम प्रमाण द्वारा हो, जिससे अज्ञानी लोग इसको समझ सके और सृष्टि तथा सृष्टा की जटिलताओं के विषय में सही सही जानकारी प्राप्त कर सके। नारद मुनि ने जानबूझकर स्वयं को अल्पज्ञ की तरह बताया कि मुझे तो पता नहीं है कि आप सृष्टा हो, आप ही परम अधिकारी हो, आप ही कारणों के कारण हो या कोई और है, तो कृपा करके क्योंकि आप बहुत महान है इसलिए आप ही सही जानकारी रखते हो तो आप ही बता सकते हैं। ये नारद मुनि इसलिए पूछ रहे हैं ताकि आजकल के जो अल्पज्ञ जीव हैं वो भगवान और सृष्टि कर्ता के विषय में अच्छे से जान लें। लेकिन आज के जो जीव इतने मूर्ख हैं कि वो शास्त्रों के इन प्रमाणों को भी नहीं मानते। लेकिन जो शास्त्रों को नहीं मानता है वो कभी भी सत्य तक नहीं पहुँच सकता है। हमें भगवान के विषय में और सृष्टि के विषय में, जीव जगत और जगदीश इनके वास्तविकता को यदि जानना है तो हमें इन प्रामाणिक शास्त्रों पर अवश्य श्रद्धा रखनी होगी। आगे श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, इस श्लोक में ब्रह्मा जी अल्पज्ञों की गलत धारणा को स्पष्ट कर देते हैं और पुष्टि करते हैं कि वे विश्व की विविधता का सृजन भगवान श्री कृष्ण के प्रकाशमान तेज द्वारा उत्पन्न की गई सृष्टि के बाद करते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, ये न स्वरोचिषा विश्वम रोचितम रोचयामहम, कि ये तो स्वयं तो भगवान ने इसको रचा है, ये वास्तविक तो तेज जो है वो भगवान का है, लेकिन मैं उन्हीं के तेज से प्रकाश प्राप्त करके आगे सृष्टि करता हूँ। तो यहाँ श्री प्रभुपाद जी इस बात के विषय में बता रहे हैं कि इस श्लोक में ब्रह्मा जी अल्पज्ञों की गलत धारणा को स्पष्ट कर देते हैं और पुष्टि करते हैं कि विश्व की विविधता का सर्जन भगवान श्री कृष्ण के प्रकाशमान तेज से उत्पन्न की गई पुष्टि के बाद करते हैं। ब्रह्मा जी ने अलग से भी यही बात ब्रह्म संहिता 5.40 में इस प्रकार कही है, यस्य प्रभा प्रभवतो जगदंड कोटि कोटिश्वशेष वसुतादि विभूति भिन्नम् तद्ब्रह्म निष्कलम् अनंतमशेष भूतम् गोविंदमादि पुरुषम् तमहं भजामि। यस्य प्रभा प्रभवतो जगदंड कोटि, यानी जिनकी प्रभा से उनकी दिव्य शारीरिक तेज से जगदंड कोटि जितने भी ये जगत है ब्रह्मांड है वो कोटि कोटि करोड़ों ब्रह्मांड में कोटिश्वशेष वसुदादि विभूति भिन्नम, तो ये सारे ब्रह्मांडों के अंदर जो कुछ भी सृष्टि है जो कुछ भी विविधताएं हैं जो कुछ भी है वो सबकी सृष्टि करने वाले तद ब्रह्म निष्कलम अनंतम अशेष भूतम, जितने अनंत अशेष असीम विविधताएं हैं अनादि काल से जो विभिन्न वस्तुएं हैं प्राकट्य जगत में जो कुछ भी है वो सब जिनकी प्रभा से है उन भगवान गोविंद को मैं नमस्कार करता हूँ। अर्थात ब्रह्मा जी कहते हैं, मैं उन आदि भगवान गोविंद की सेवा करता हूँ जिनका दिव्य शारीरिक तेज जो ब्रह्म ज्योति के नाम से प्रसिद्ध है, जो असीम अगाध तथा सर्वव्यापी है, वे उन असंख्य
लोक को आदि की सृष्टि के कारण हैं, जिनमें नाना प्रकार के जलवायु तथा जीवन की दशाएं हैं। यही वक्तव्य श्रीमद् भगवद गीता 14.27 में पाया जाता है। भगवान कृष्ण ही ब्रह्म ज्योति के आधार हैं। ब्रह्मण्यो ही प्रतिष्ठाहम्। निरुक्ति अर्थात वैदिक कोश में प्रतिष्ठा शब्द का उल्लेख जो स्थापित करता है उसके रूप में हुआ है, यानी ब्रह्मण्यो ही प्रतिष्ठाहम्, ब्रह्म को मैंने प्रतिष्ठित किया है, ब्रह्म मुझसे उत्पन्न हुआ है, भगवान ऐसे बता रहे हैं। तो यहाँ पर इसी बात को यहाँ श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि प्रतिष्ठा शब्द का क्या उल्लेख है, जो स्थापित करता है उसके रूप में हुआ है। इस तरह ब्रह्म ज्योति स्वतंत्र या आत्मनिर्भर नहीं है। अब जाहिर सी बात है, भगवान ने इसको प्रतिष्ठित किया है, भगवान से निकली है, तो ब्रह्म ज्योति अलग से उसका कोई इंडिविजुअल स्वरूप तो नहीं होगा ना, आत्मनिर्भर तो नहीं होगी। तो भगवान कृष्ण ही अंततोगत्वा ब्रह्म ज्योति के सृष्टा है, जिसे इस श्लोक में स्वरोचिषा या भगवान के दिव्य शरीर का तेज कहा गया है। यह ब्रह्म ज्योति सर्वव्यापी है और इसकी निहित शक्ति से ही सारी सृष्टि संभव होती है। अतएव वैदिक स्तोत्र घोषित करते हैं कि जितनी वस्तुओं का अस्तित्व है वे ब्रह्म ज्योति द्वारा धारित हैं। सर्वखिलम इदम् ब्रह्म, सर्वखिलव इदम् ब्रह्म, जो कुछ भी संसार में है, जितनी भी वस्तुएं हैं, जिस वस्तु का जो प्राकट्य है, अस्तित्व है, वो ब्रह्म ज्योति द्वारा है। और ब्रह्म ज्योति के आधार कौन है? ब्रह्मण्यो ही प्रतिष्ठा हम। अहम का मतलब है भगवान कहते हैं वो ब्रह्म ज्योति तो मुझसे प्रकट होती है, मैं उसको स्थापित करता हूँ। इस प्रकार सारी सृष्टि का बीज ब्रह्म ज्योति है और यही असीम तथा अगाध ब्रह्म ज्योति भगवान द्वारा स्थापित की जाती है। अतएव भगवान कृष्ण ही सारी सृष्टि के परम कारण है। अहम सर्वस्य प्रभव मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। आगे श्री प्रभुपाद जी कहते हैं हमें यह उपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि भगवान लोहार की तरह हथौड़े तथा अन्य औजारों से सृजन करते होंगे। अब यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी बहुत ही सुंदर तरीके से भगवान की सृष्टि करने की विधि को बता रहे। अब जब संसार में हमको अगर किसी घर को बनाना होगा तो हम क्या करेंगे, हथौड़ा उठाएंगे और उसको ना ठोका ठोकी शुरू कर देंगे कि भाई बनाना है बनाना है। लेकिन थोड़ा सा रईस व्यक्ति होगा वो क्या करेगा कि किसी न किसी वर्कर को या फिर ठेकेदार को पूरा काम दे देगा कि देखो भाई आप ये सारा काम करवाओ, और वो भी क्या करेगा अलग से सारे वर्करों को जुटाएगा और उनसे काम करवाएगा। तो अगर भगवान ने ये सारे ब्रह्मांड का सृजन किया है तो हम भगवान से ये तो है ना उपेक्षा नहीं करेंगे कि वो है ना हथौड़ा उठाएगा लोहार की तरह काटेगा पीटेगा कि भाई यहाँ से लेकर यहाँ तक मुझे दरिया बनानी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक वृक्ष बनाने, फिर पहाड़ बनाने, यहाँ से सूर्य बनाना है, फिर नहीं। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं वे तो अपनी शक्तियों से सृजन कार्य करते हैं, उनकी बहुगुणित शक्तियां हैं, परास शक्ति विविधाए वसूयते, उनकी बहुत सारी शक्तियां हैं। जिस प्रकार एक छोटे से वट बीज में विशाल वट वृक्ष उत्पन्न करने की क्षमता होती है, उसी प्रकार भगवान अपनी ब्रह्म ज्योति स्वरोचिषा से सभी प्रकार के बीजों में बीजों को फैलाते हैं और ये बीज ब्रह्मा जैसे व्यक्तियों द्वारा सींचे जाने पर विकसित होते हैं। अब यहाँ श्री प्रभुपाद जी ने सुंदर सा उदाहरण दिया वट बीज का। वट बीज मतलब एक बहुत विशाल पीपल का वृक्ष हो, दिखने में तो छोटा सा बीज होता है लेकिन उनके अंदर एक विशाल वट वृक्ष होता है। उसी तरह से ब्रह्म ज्योति दिखने में ब्रह्म ज्योति है, लेकिन उसी ब्रह्म ज्योति से जो भगवान का स्वरूप ही है उसमें से ही निकली ब्रह्म ज्योति है, उसे सभी प्रकार के बीजों को भगवान जो है वो तेज प्रदान करते हैं। और ये बीज ब्रह्मा जैसे व्यक्तियों द्वारा सींचे जानते हैं। ब्रह्मा जी को ये सारी शक्ति प्राप्त होती है और ब्रह्मा जी सृष्टि का सृजन करते हैं। ब्रह्मा बीजों को उत्पन्न नहीं कर सकते, किंतु वे बीज को वृक्ष के रूप में दिखला सकते हैं। जिस प्रकार माली जल से सींच सींच कर पौधों को तथा अमराइयों को बड़ा बनाता है, यहाँ पर दिया गया सूर्य का उदाहरण अत्यंत उपयुक्त है। भौतिक जगत में सूर्य ही समस्त प्रकाश का यथा अग्नि बिजली चंद्रमा की किरणों इत्यादि का कारण है। आकाश के सारे ज्योतिष सूर्य की सृष्टियां हैं। सूर्य ब्रह्म ज्योति का सृजन है और ब्रह्म ज्योति भगवान का तेज है। इस प्रकार सृष्टि के अनंतिम कारण भगवान है। तो यहाँ पर अत्यंत सुंदर रीति से ब्रह्मा जी ने इस बात पर ये बता दिया कि मैं तो भगवान के ही तेज को लेकर, भगवान से तेज प्राप्त करके ही संसार की सृष्टि करता हूँ। और अब बताएंगे कि किस तरह से भगवान ब्रह्मा जी को यह शक्ति प्रदान करते हैं और ब्रह्मा जी सृष्टि का सृजन करते हैं। तो कल से ब्रह्मा जी उपदेश करेंगे और सबसे पहले वो मंगलाचरण करेंगे और हम अत्यंत ही सुंदर रीति से भगवान के इन अद्भुत कार्यकलापों को श्रवण करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया साथ रहिएगा, मेरे लिए प्रार्थना करना मत भूलिएगा कि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे से कर सकूं। हरे कृष्ण।